તારીખ 20/2/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 510 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 615
રાજચંદ્ર પંચનામૃત પત્ર 510 પૃષ્ઠ હિન્દી મેં 418 હૈ श्री स्तंभ तीर्थ स्थित शुभेच्छा संपन्न श्री त्रिभुवनदास के प्रति यथा योग्य पूर्वक विनंती की। स्तंभ तीर्थ मैंने खंभात, आज जो खंभात का नाम से जो सिटी है उसका पौराणिक नाम है स्तंभ तीर्थ। स्तंभ मैंने खंभा, तीर्थ मैंने तो ऐसा ना खंभा संक्षेप में गुजराती में हो गया। शुभेच्छा संपन्न, शुभेच्छा माने आत्मकल्याण की इच्छा जिसको है उस शुभ इच्छा है, ऐसी इच्छा से संपन्न है ऐसे मुमुक्षु त्रिभुवन दास को पत्र लिख रहे हैं। बंध वृत्तियों का उपशम करने के लिए और निवर्तन करने के लिए जीव को अभ्यास, सतत अभ्यास कर्तव्य है। क्या कहते हैं? जिस परिणाम से नए कर्म बंधते हैं उस परिणाम को, उस वृत्ति को बंध वृत्ति कहते हैं। बंध वृत्ति किसको कहते हैं? कि जिस परिणाम से नए कर्म बनते हैं और संसार के परिभ्रमण के कारणभूत कर्म बनते हैं, ऐसे परिणामों को, ऐसी वृत्तियों को उपशम मैंने निरस करने के लिए, उपशम करना मैंने फिक्के कर देना, फिक्का परिणाम कर देना, निरस कर देना, और निवर्तन करने के लिए, निवर्तन मैंने अभाव करना, नाश करना, नाश करने के लिए या उसको निरस करने के लिए जीव को अभ्यास, सतत अभ्यास कर्तव्य है। अभ्यास मैंने प्रैक्टिस, निरस करने के या नाश करने के लिए पुरुषार्थ करना, प्रयास करना, बार बार प्रयास करना, उसको अभ्यास कहते हैं। और वो बार बार मतलब सतत निरंतर चले ऐसा अभ्यास, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, वो करने योग्य है। क्योंकि विचार के बिना और प्रयास के बिना उन वृत्तियों का उपशम अथवा निवर्तन कैसे हो? विचार के बिना मैंने आत्मकल्याण की भावना वाला विचार यानी सुविचारना, जिस विचार में आत्मकल्याण की मुख्यता हो, ऐसे विचार बिना और प्रयास, प्रयोग, प्रयत्न के बिना उन वृत्तियों का उपशमन अथवा निवर्तन कैसे हो? तो निरस भी नहीं होगी और उसका अभाव भी नहीं होगा। कैसे हो मतलब कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वृत्ति मतलब परिणाम, वृत्ति मतलब परिणाम। बंध वृत्ति मैंने बंध भाव, भाव कर्म जिससे नए कर्म बनते हैं उसको भाव कर्म कहते हैं। वो बंध परिणाम, बंध के परिणाम है या बंध वृत्ति है।
ये तो मेरे घर में चालू है।
એનું મહત્વ ઓછું થવું જોઈએ. જે કામ કરી લેવાથી જે લાભ છે એ લાભનું મહત્વ વધારે છે એટલે વારંવાર થાય છે. એની શુદ્રતા આવવી જોઈએ, તુચ્છતા. શુદ્રતા માને તુચ્છતા લગની જોઈએ કે અમારે જે અમારા જે ઉદય મેં જો કાર્ય હૈ વો તો તુચ્છ કાર્ય હૈ, ઇસે કોઈ આત્મલાભ તો હોને વાલા હૈ નહીં. ઉદય મેં જીતને જીતના જોડને કા હોગા ઉતના નુકસાન હોગા, ઉતના કર્મ બંધ હોગા હી હોગા. ઇસલિયે જો ઉદય આયા હૈ તો યા તો ઉસમે હમ નિરસ હો જાએ, યે બાત પહેલે હો સકતી હૈ. કેસે હો સકતી? આત્મ વિચાર સે, આત્મ કલ્યાણ કી મુખ્યતા વાલે વિચાર સે વો નિરસ હો જાતા હૈ, ક્યોંકિ ઉસકી તુચ્છતા ભાસતી હૈ ઓર વો નિકમ્મા જૈસા લગતા હૈ. લેકિન આ ગયા હૈ તો ક્યા કરે, કરના પડેગા. હમકો કરના હૈ ઓર કરના પડતા હૈ, દો મેં બહોત અંતર હૈ. હમારે રસ સે કરતે હૈ, અભિપ્રાય સહિત કરતે હૈ કે કરના ચાહિયે, ઓર કરના પડતા હૈ ઉસમે કરને કા અભિપ્રાય નહીં હૈ તો રસ ભી નહીં હૈ, ફિર ભી કરના પડતા હૈ તો કર લેતે હૈ. જૈસે કેદી કો જેલર કામ કરાતા હૈ, ઉસકો કુછ મિલતા તો નહીં, એ તો એક સજા ભુગતને કી બાત હૈ. ઉસકો કુછ પારિશ્રમિક તો મિલેગા નહીં કે ચલો તુમને ઉતના કામ કિયા તો ઉસકે બદલે મેં ઉતના પૈસા મિલેગા, વો બાત તો વહાં હૈ નહીં. કે પથ્થર કો તોડ દો, એ લકડી કો કાટ દો, મજદૂરી કરાતે હૈ. એસે પૂર્વ કર્મ હૈ વો જેલર હૈ ઓર હમ હૈ ઇનકે કેદી. પૂર્વ મેં અપરાધ કિયે હૈ તો જેલ મેં આ ગયે, એ શરીર ભી એક જેલ હૈ. હા દેખો, સર્પ કો કૈસી જેલ મિલતી હૈ, ચૂહા કો કૈસી મિલતી હૈ, બંદર કો કૈસી મિલતી હૈ, હમકો કૈસે મિલી. કોઈ ફર્સ્ટ ક્લાસ હૈ, કોઈ સેકન્ડ ક્લાસ હૈ, કોઈ થર્ડ ક્લાસ હૈ, કોઈ ફોર્થ ક્લાસ હૈ, લેકિન હૈ જેલ હૈ. ક્યોંકિ ઇસમે હમ પરાધીન હૈ, શરીર મેં હમ પરાધીન હો જાતે હૈ, જૈસે જેલ મેં પરાધીન હોતે. ઓર પૂર્વ કર્મ હમારે સે મજદૂરી કરાતે હૈ, તો કરની પડતી હૈ વો અલગ બાત હૈ. હમે રસ આતા હૈ વો હમારા અજ્ઞાન હૈ, અજ્ઞાન કે કારણ રસ આતા હૈ. અજ્ઞાન મેં વો બાત વિસ્મૃત હો જાતી હૈ કે હમ જેલ મેં આયે હુએ હૈં, વો બાત હમ ભૂલ જાતે હૈ. ઓર જેલ કો ભી અચ્છી માન લેતે હૈ, ઉનકો હમ ઠીક કરતે હૈ. જૈસે કોઈ કેદી જેલ કી દીવાર મેં કોઈ ગડબડી હુઈ તો ઉનકો સંભારને કા કામ કરને લગ ગયા કે યે તો મેરા કમરા હૈ, ઉસકો મેં ઠીક રખું. તે બાત એસી હૈ શરીર કો ઠીક રખને કી, ઉસકો સાધન પ્રસાધન લગાને કી જો બાત હૈ, વો સબ એસી બાત હૈ. ઉસમે જીવ કો સહી બાત કા વિચાર નહીં હૈ, સમજ નહીં હૈ, અજ્ઞાન કે કારણ સે સબ ગડબડ ચલતી હૈ. તો કુદરત ઉસકો નઈ નઈ જેલ મેં લે જાતે હૈ ઓર ડિગ્રેડ કરતા હૈ. કુદરત ક્યા કરતા હૈ? જેલ મેં ભી ડિગ્રેડ કરતા હૈ, ફિર ઇસે ઉતરતી, ફિર ઇસે ઉતરતી, ફિર ઉસ ચાર ઇન્દ્રિય, તીન ઇન્દ્રિય, દો ઇન્દ્રિય, એક ઇન્દ્રિય મેં ચલા જાતા હૈ. તો સંકલ્પ પૂર્વક કરેંગે તો અભિપ્રાય હો ગયા ને કામ કરને કા. કરના પડતા હૈ વો અલગ બાત હૈ, ઓર હમકો કરના હૈ વો અલગ બાત હૈ, દો બાત અલગ અલગ હૈ.
જેલ
रुचि से करते हैं ना, ड्यूटी है वो। हाँ वो तो क्या है कि वो तो जेलर कराता है, अगर ठीक नहीं करते तो डंडा भी मारता है, ऐसी बात हो जाती है। ठीक है वो कराता है तो कर लो, उसमें रस कैसे आएगा। धंधो से ही धनी धनी बन जाता है तब तो ये होता है। वो अपने को धनी क्यों बनाता है, वो अपने को मैनेजर बना ले। और जिसके ऊपर बड़े भाई या पिताजी हो उनको तो नौकर बनना बहुत आसान है। चलो वो तो अपने को बोलता है कि तुमको जाना है कारखाने, चलो चले चाहे चले गए, इतना घंटा काम करना पड़ेगा, कर लिया बात खत्म, हम क्यों धनी बन जाए। वो जो तो ही उपड़े से मुकले से तुमने बीजा, तुम्हें धनी बनी जाओ त्या जी ने। બીજું ધણી બનવાની વાત છે, એવી વાત છે। પરમાર્થ માર્ગ મેં તો ધણી હોતે હુએ ભી ધણી નહીં બનના હૈ, પણ ઇસમે તો આપ ધણી હૈ નહીં ફિર ભી ધણી બન જાતે, યે વાત હોગી। જબ હમારે સે ઉપર કોઈ કામ કરને વાલે, સંભાલ કરને વાલે, बताने वाले, दिखाने वाले कि वैसा करना है वैसा करना है, फिर हम धनी क्यों बने। आपने बोला वैसा हमने कर दिया, बात खत्म, हम क्यों बोझा लेके फिरे। बोझा लगना चाहिए तब तो नहीं करेंगे, लेकिन रस है तो बोझा नहीं लगेगा। 3 साल का बच्चा 2 किलो को उठा नहीं सकता है, फिर जिद करता है कि नहीं हमको उठाना है, हमको उठाना है, आप मत उठा, हम उठाएंगे। बाजार में खरीदी जाए ना, 4 वर्ष में छोकरो हारे जाए, वो बच्चा क्या बोलेंगे, हमको दो दो थैली, हमको थैली दे दो, हम उठाएंगे। वो तुम नहीं उठा सकता है, तुमको ये बोझा लगेगा, नहीं हमको नहीं लगेगा। ऐसा आप धनी बन के बताते हैं या मैनेजर बन के बताते हैं। मैनेजर भी नीचे वाले को काम बता सकता है, वो धनी भी बता सकता है। आप क्या बनते हैं वो देखो, आप खुद मालिक बन के काम करोगे तो वो अपनत्व का जो बंध है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और कितना भी आप अपनत्व करो, कोई चीज साथ में रहने वाली आने वाली है ही नहीं, ये बात जरूर है। अनंत काल से अनंत जीवों ने परमाणु पर अपनत्व जमाने का, अधिकार जमाने का अनंत प्रयास किया है। एक परमाणु पर किसी का, किसी जीव का अधिकार नहीं हुआ और नहीं होगा, ये वस्तु स्थिति है और ये वितरागी कानून है। वितराग जैन परमेश्वर सर्वज्ञ देव का ये कानून है। हम कानून भंग करते हैं इसलिए दंड भुगतते हैं, भुगना पड़ता है। वो जो भी कानून का भंग करेगा उसका तो दंड भुगतना ही पड़ेगा, ये बात है। इसलिए हम हमारी सुख शांति के लिए, किसी और के लिए नहीं, हमारी सुख शांति के लिए, हमारे कल्याण के लिए हम सोच समझ करके करें, जो भी करें बिना समझे कुछ नहीं करें। क्या जरूर है डेटापन करने का, कारण के बिना किसी कार्य का होना संभव नहीं है। तो फिर यदि इस जीव ने उस वृत्तियों का उपशमन अथवा निवर्तन का कोई उपाय न किया हो तो उनका अभाव नहीं होता, यह स्पष्ट संभव है। बस लॉजिकली बात है तो, और ये कारण कार्य का विज्ञान है, साइंस है कि कारण बिना कोई कार्य होता नहीं। जैसे हम तंदुरुस्त हैं और एक्सीडेंटली रोग चालू हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, हम चाहे नहीं चाहे, क्यों? कि उसका कारण हमने पूर्व में बनाया है, हमने खान पीन में रस लिया, क्या क्या, चलो क्या रोग होने क्या क्या कारण है। ये होम्योपैथी ये बोलती है तीव्र रस से खाना ये रोग होने का कारण है। वो लोग हाँ, क्योंकि वो सारा जो साइंस है वो जीव के फीलिंग्स पर वो दवाई बनाई है उन लोगों ने, तो उन्होंने वहाँ तक संशोधन किया है, खोज किया है कि तीव्र रस से कोई खाना लेता है उसको रोग होने का कारण बनता है। भोगे रोग भयम, ये भोग है वो रोग का कारण बनता है। ऐसा तो पांचों इंद्रियों में लागू पड़ता है, ये तो एक दृष्टांत है रसना इंद्रिय का। तो कारण के बिना कार्य नहीं होता, तो वो सिद्धांत के अनुसार अगर हम हमारे बंध परम को मिटाने का कोई कारण ही नहीं बनाएगा तो कार्य होगा कैसे, वो मिटेगा कैसा कि नहीं मिटेगा। એમાં રોગ દેખાય તો ક્યાંથી રસ આવે? સાંભળ્યું છે, ક્યાં ખોવાઈ જાય છે સમજાતું નથી, આ બધું ઘણી વાર ચાલી ગઈ। કઈ બાર
રોગ એટલે
પીડા, પીડા ભોગવવી પડશે, રસ લીધો તો પીડા ભોગવવી પડશે। માણસ એમ કહેશે કે રસ વગર ખાવું શું, એમાં શું મજા આવે? સારી સારી ચીજો બનાવીને ખાઈએ આપણે, ટેસ્ટફુલ, એ વગર મજા શું આવે? ભાઈ તારે ટેક્સીને ભાડું દેવાનું છે, જીસ ટેક્સી મેં તુમ સફર કરતા હો તુમ ઉસકો કિરાયે દો, કિરાયો મેં એસા ઇસ નોટ કા દેના નહીં નોટ કા દેના, એ કહાં કી બાત હૈ, નહીં દો પુરાની દો, બાત તો એક સી હૈ, નહીં નોટ કા દસ કા સવા દસ કોઈ નહીં દેતે, દેતે ક્યા, ફિર ક્યા મૂલ્ય રહ્યા ઇસકા? એસે હમ इस शरीर में सफर करते हैं, रहते हैं, किराया मकान का किराया टैक्सी का किराया देना पड़ेगा, डाल दो थोड़ा बहुत, इससे ज्यादा रस लेने का परिणाम है तो पीड़ा को भोगनी पड़ेगी। वो कुदरत का घर का नियम है, वो साइंस है, इसमें किसी की चलती नहीं। જીતના માંગે ઉતના દે દો, આપકો ચાર રોટી કી ભૂખ હૈ ચાર રોટી દે દો, તીન કી ભૂખ હૈ તીન, છ કી ભૂખ હૈ તો છ દે દો, જ્યાદા દોગે તો વો તો બહોત પ્રમાણિક હૈ, બહાર ફેંકેગા। અગર અચ્છા લગ ગયા, ટેસ્ટફુલ લગ ગયા ઓર જ્યાદા ખા લિયા તો વોમિટ હો જાયેગી, યા ટટ્ટી લગ જાયેગી। ઓવર ઈટિંગ પ્રોડ્યુસિસ પોઇઝન, પોઇઝન બન જાયેગા અંદર મેં। आपने कहा कि ये घी वाला माल है, अच्छा है, थोड़ा ज्यादा खाएं, शक्ति मिलेगी लेकिन वॉमिट होने से, अशक्ति मिलेगी, शक्ति तो नहीं मिलेगी अशक्ति हो जाएगी। काया शक्ति के लिए और वह अशक्ति का कारण, उसमें से विवेक रखना पड़ता है, बस उतना ही रखो। कई बार पूर्व काल में वृत्तियों के उपशमन तथा निवर्तन जीव ने, परंतु वैसा कोई साधन नहीं किया, और अभी तक जिस उस प्रकार का कोई उपाय नहीं करता, अर्थात अभी उसे उस अभ्यास में कोई रस दिखाई नहीं देता, तथा कटुता लगने पर भी इस कटुता के अवगुण ना कर जीव उपशमन एवं निवर्तन में प्रवेश नहीं करता। क्या कहते हैं कि कई बार भूतकाल में, पूर्व काल में वृत्तियों को उपशमन और निवर्तन करने, निवर्तन का जीव ने अभिमान किया है। कैसे? कुछ त्याग कर दिया, चलो हम ये त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इस त्याग करने का अभिमान किया है, वृत्ति का निवर्तन या उपशमन नहीं किया है, वृत्ति को दबाया है, उपशमन नहीं किया है, दमन किया है, और दमन करके त्याग कर दिया है। ऐसा साधन करने में अभिमान होता है, क्योंकि वृत्ति का तो ध्यान नहीं रहा कि हमारी वृत्ति का क्या हुआ, तो परिणमन में तो अभिमान हो जाएगा कि हमने उतना त्याग कर दिया, हमने उतना त्याग कर दिया, हमने उतना त्याग कर दिया। वो दमन किया है, उपशमन या निवर्तन नहीं है।
दमन तो वैसे ही
निरस्पण बोलिए, तो यानी उपशमन किए थे, वैराग निरस्ता एने जो उपशमन किए थे, यानी उत्पन्न था यानी निवर्तन किए थे, परंतु वैसा कोई साधन नहीं किया, यानी यथार्थ साधन कभी नहीं किया। साधन किया लेकिन ए यथार्थ, और अभी तक जीव उस प्रकार का कोई उपाय नहीं करता, यानी यथार्थ उपाय नहीं करता है, अर्थात अभी उसे उस अभ्यास में कोई रस नहीं दिखाई देता। किसमें? उपशमन और निवर्तन करने की यथार्थ पद्धति, कार्य पद्धति है, उसमें तो रस आता नहीं है। और कटुता लगने पर वो बात जरा कठिन लगती है, ज्ञानी के मार्ग पर आने में कठिनता लगती है, क्योंकि वो तो दर्शन मोह को तोड़ना है, मिठास तोड़ना है, मिठास को छोड़ना है, तो वो बात तो कड़वी लगती है। और वो कटुता की अवगणना करके भी उस उपशमन एवं निवर्तन का प्रवेश नहीं करता है। कटुता लगे तो लगे, लेकिन यही करना है, ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करना होगा, ऐसा नहीं किया कभी। मैंने अपने को अच्छा नहीं लगा तो नहीं किया, जो कार्य ठीक लगा वो किया, ठीक नहीं लगा वो नहीं किया। अपनी मनमानी करता है जी, ऐसे तो काम होता नहीं है। इस यह बात इस दुष्ट परिणामी जीव के लिए बारंबार विचारणीय है। देखो कैसा किया, ऐसा हमने गलती किया और हमारा कल्याण में कुछ काम नहीं किया, उल्टा काम कर दिया, ये दुष्ट परिणामी जीव है। वो बारंबार विचार करने हैं, विचार करने जैसी बात है, किसी प्रकार से विसर्जन करने योग्य नहीं है, वो बात को छोड़ना नहीं चाहिए। विसर्जन करना मैंने छोड़ देना नहीं चाहिए, अच्छा लगे नहीं लगे, कठिन लगे कुछ भी लगे, लेकिन जिस कार्य जिस प्रकार से जो काम होता है उसी प्रकार से करना है, दूसरे प्रकार से नहीं करना है। हाँ, भले तने वसमू लागे, मैंने दुष्कर लगेगा, लेकिन तुमको करना ही है। दुष्कर इसलिए लगेगा कि मोह भाव में मिठास बहुत है, अच्छापन बहुत लगता है, वो मिठास को तोड़नी है, उसको यहाँ कटुता कहते हैं। मिठास का विरुद्ध क्या है? कटुता। वो मिठास को तोड़नी है, रस में मिठास आते हैं, उसको तोड़ना है। खचित मैंने उसको कहते हैं, अक्सर ऐसा ही काम करना चाहिए। जिस प्रकार से पुत्रादि संपत्ति में इस जीव को मोह होता है, देखो ये सबको लागू पड़ता है, सभी गृहस्थ मुमुक्षुओं को ये लागू पड़ता है कि जिस प्रकार से पुत्रादि संपत्ति में, पुत्र में, पुत्री में, परिवार में आदि में सब ले लेना, पति पत्नी माँ बाप भाई बहन सब ले लेना, इस जीव को मोह होता है। मोह होता है मैंने अपनापन लगता है, वह प्रकार सर्वथा निरस और निंदनीय है। ये तो बिल्कुल निंदा करने योग्य बात है, ये मोह निंदा करने योग्य है, ऐसी बात है। मैंने ऐसे मोह का कड़ा निषेध आना चाहिए, निंदा करना मैंने खेद होना चाहिए, कड़ा निषेध आना कि मेरे को ये क्यों होता है, ऐसा भाव मुझे क्यों होता है जिससे मैं अधोगति में चला जाऊं, ऐसा मैं मेरे को नुकसान क्यों करता हूं। ये जो परिवार आदि में मोह से अपनापन करता है वो अधोगति में नियम से जाता है, उसका फल अधोगति के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन जीव को मालूम नहीं है, अज्ञान है, अनजाना है, इसलिए वो नॉर्मल रूप से कर लेता है, क्योंकि सब ऐसा ही करता है, पड़ोसी भी ऐसा करता है, वो भी ऐसा करता है, सगे संबंधी भी ऐसा करते हैं, सब अपने परिवार में अपने तो करता है, तो हम करें उसमें क्या कोई विशेष बात क्या है, वो तो सामान्य बात है, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन पारमार्थिक बात वो है तो वो अधोगति का कारण बनता है। क्यों अधोगति का बनता है कि जीव इसके लिए कैसा कैसा पाप करेगा, इनका कोई हिसाब रहने वाला नहीं है, और ये प्रत्यक्ष दिखने में आता है। तो ये अपनत्व है, आज कतल खाना चलाने वाला भी परिवार में अपनत्व का कारण से ही चलाता है। हम आज नहीं चलाते हैं तो कल तो चलाएंगे ही, अगर अपनत्व चालू रहा तो, यही बनने वाला है। वो जैसे अपने नुकसान में बेभान है, वैसे हम ही अपने नुकसान में बेभान हैं। तो बेभान अवस्था में कभी क्या होगा क्या मालूम पड़ सकता है, यही बात है। इसलिए यह प्रकार सर्वथा निरस में रस लेने योग्य नहीं है और निंदा करने योग्य है। जीव यदि ભયંકર નુકસાન નું કારણ છે, મારા વડીલ છે, કોઈ પણ સભ્ય હોય, પરિવારનો સભ્ય છે, નહીં કોઈ ન આવે તો પોતે જ ભોગવવું પડે, અપના અપરાધ કા ફલ અપને કોઈ ભોગના હે, કોઈ ઉસમેં પાર્ટિસિપેટ કરેગા નહીં ઓર કરના ચાહેગા ભી નહીં। હા દેખ લેના, સભી સ્વાર્થી હી હોતે હૈ, સંસાર કે જીવ તો સભી સ્વાર્થી હોતે હૈ, અનુકૂળતા રહેતી હૈ વહાં તક તો ઠીક હૈ ચલતા હૈ, પ્રતિકૂળ ચલતા હૈ સામને વાલા તબ દેખ લેના હમ ક્યા કરતે હૈ। જી બાત હૈ, જીવ યદિ જરા ભી વિચાર કરે તો, यह बात स्पष्ट समझ में आने जैसी है कि इस जीव ने किसी में पुत्रत्व की भावना करके अपना अहित करने में कोई कसर नहीं रखे। पारमार्थिक बात का थोड़ा भी विचार करेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये अपनत्व कर्म करने में हमने हमारा नुकसान करने में कोई कसर नहीं रखी। पुत्रत्व हो, पुत्रत्व तो एक दृष्टांत लिया है, पुत्र है, पुत्री है, कोई भी है, कोई भी संबंध संसार का हो, इसके लिए अगर हम अपनत्व करके क्या करते हैं कि अपना अहित करने में कोई कसर नहीं रहती। पुत्रपना पुत्रत्व की भावना करके वो तो अच्छा लगता है ना। भावना में क्या लगता है? अच्छा लगता है, रस आता है, भाता है। भावना में क्या होता है? भाता है, तो भाता है तो रस आता है। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। हाँ, ये कठिया बड़ी भाषा है कि आज ये पुत्रपणू भावी ने पोतानू अहित करवामां माथू करवामां मणा राखी नहीं। मणा एटले कसर, वो सही बात है। बहुत भाववाही बात है। कृपालु देव की जो भाषा है, वाणी है, बहुत भाववाही है। अगर जीव थोड़ा भी हलूकर्मी होता है तो उसके अंतरंग को, मर्मस्थल को वो स्पर्श कर लेती है वाणी। और उसको उसके आत्मा में असर पहुंचाती है। अगर असर पहुंचती है तब उसको पारमार्थिक लाभ का कोई अंश पैदा होता है और इस वाणी का उपकार इस आत्मा पर हो जाता है। ऐसी बात बनती है। क्या कहा? जीव यदि जरा भी विचार करे तो, ज्यादा नहीं, थोड़ा भी विचार करे तो यह बात स्पष्ट समझ में आने जैसी है कि इस जीव ने किसी जीव अन्य जीव में पुत्रत्व की भावना करके अपना अहित करने में कोई कसर नहीं रखी। और किसी को पिता मानकर भी, पुत्र मानकर के और पिता मानकर भी वैसा ही किया है। मैंने अधोगति में जाने का ही परिणाम किया है। और कोई जीव अभी तक तो पिता पुत्र हो सका हो ऐसा देखने में नहीं आया। सब जीव है, कोई किसी का पिता हो पुत्र हो बात तो संभव ही नहीं है, ऐसा बन ही नहीं सकता। सब कहते आए हैं कि इसका यह पुत्र अथवा इसका यह पिता है, परंतु विचार करते हुए स्पष्ट प्रतीत तो होता है कि यह बात किसी भी काल में संभव नहीं है। क्यों? कि पूर्व में यह जीव कहीं था, आज कहीं और, भविष्य में कहीं और जाएगा। कभी पिता है वही पुत्र होता है, पुत्र होता है वही पिता होता है। दुश्मन है वो मित्र होता है, मित्र वही दुश्मन हो जाता है। अब दुश्मन होता है वो पिता बनता है, ठिकाना दुश्मन होता है पुत्र बन जाता है। जिसका मुंह देखना नहीं चाहता उसको प्यार करने लग जाता है। देखो क्या हालत होती है, ये सब गड़बड़ी हो जाती है। परंतु विचार करते हुए स्पष्ट प्रतीत तो होता है कि यह बात किसी भी काल में संभव नहीं है। अनुत्पन्न ऐसे इस जीव को, कैसा है जीव? अनुत्पन्न ऐसे इस जीव को पुत्र रूप से मानना अथवा ऐसे मनवाने की इच्छा रहना ये सब जीव की मूढ़ता है और कुछ नहीं। मूढ़ता मैंने जिसका ज्ञान अज्ञान के कारण सिकुड़ गया है, विवेक नहीं रहा, हित अहित का जिसमें विवेक नहीं रहा, तो ये सब जीव की मूढ़ता है। और भ्रम मूढ़ता किसी भी प्रकार से सत्संग की इच्छा वाले जीव को करना योग्य नहीं है। जगत के जीव करो तो करो, लेकिन जो जीव सत्संग की इच्छा रखता है, मैंने सत्संग से आत्मकल्याण की इच्छा रखता है, उसको सत्संग की इच्छा कहते हैं। सत्संग में आने की इच्छा वो बात नहीं है, सत्संग के दौरान अपना आत्मकल्याण को जो चाहता है उनके लिए ये प्री कंडीशन है कि उनको ऐसे पुत्रत्व की पितापना की मूढ़ता करनी नहीं है। ये शर्त है, सब्जेक्ट टू कंडीशन आना सत्संग में। सत्संग का आश्रय करना मतलब क्या हुआ कि सत्संग में ये बात है कि ऐसा मोह नहीं करना है तुमको, अपनत्व नहीं करना है, तुम्हारा अकल्याण हो जाएगा, तुम अधोगति में चले जाओगे। तो ये बात को आश्रय करना है, मैंने लागू करना है, ऐसे भाव को छोड़ देना है। इसलिए ऐसी मूढ़ता किसी भी प्रकार से सत्संग की इच्छा वाले जीव को करना योग्य नहीं है। तो उसको तो विवेक कम से कम होना ही चाहिए, सत्संग में आने वाले को तो होना ही चाहिए। तो सत्संग नहीं करते हैं, सत्संग में उसको तो ये मालूम ही नहीं है, तो वो तो बेचारा अनजाने से मर जाते हैं, दुर्गति में चले जाते हैं। तुमको तो ये बात समझ में आ गई तो तुमको तो ये करना योग्य नहीं है। आपने जो मोहादि प्रकार के विषय में लिखा है वो दोनों के लिए भ्रमणा का हेतु है, भ्रमण का हेतु है, परिभ्रमण का हेतु है। आपने उस क्या है कि त्रिभुवन दास ने अपने परिणाम लिखे हैं कि हमको हमारे पुत्र के प्रति ऐसा मोह भाव रहता है, तो लिखा हम दोनों को रहता है, मैंने पति पत्नी दोनों को रहता है, तो लिखे कि आप दोनों के लिए वो भ्रमण का हेतु है, परिभ्रमण में आपको ले जाएगा, ये मुहादि आपको करने योग्य नहीं है। अत्यंत विडंबना का हेतु है, तो भविष्य में आपको बहुत तकलीफ पाओगे, बहुत दुखी हो जाओगे, इसका कारण है। ज्ञानी पुरुष भी, इसमें तो ज्ञानी को भी इजाजत नहीं है ऐसा मोहभाव अपनत्व करने का, ज्ञानी को भी, ज्ञानी के लिए भी मंजूरी नहीं दिया। ज्ञानी पुरुष भी यदि इस तरह आवरण करे यानी अपनत्व कर ले तो ज्ञान को ठोकर मारने जैसा है, ये अपने ज्ञान को उड़ा देता है, ठोकर मार के ज्ञान का ज्ञान हो जाता है। और सब प्रकार से अज्ञान निंद्रा का वह हेतु है, वो ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा। और निंद्रा में जैसे भान नहीं है वैसे अपना हित अहित का भान नहीं रहेगा। इस प्रकार के विचार से दोनों को सीधा भाव कर्तव्य है। सीधा भाव मैंने सरल, तो देखो ये भी एक जीव है जो पुत्र के रूप में लोग समझते हैं या व्यवहार किया जाता है, ये पूर्व प्रारब्ध से ये जीव हमारे घर में आया है या हमारे समागम में आया है, संयोग में आया है, वो स्वतंत्र है। हमको इसमें कोई हम पुत्रत्व की कल्पना करनी नहीं चाहिए। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि इसकी कल्याण की वांछा करें। और इसकी क्यों, जगत के सभी जीवों की करें, इसमें उसका भी समावेश है। मेरा पुत्र है इसलिए मैं इसका कल्याण चाहूं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। इस तरह से तो नहीं, कल्याण किसका हम नहीं चाहेंगे, ये जीव मात्र का कल्याण हो। हमारी भावना की विशालता ऐसी होनी चाहिए कि जीव मात्र का कल्याण हो। और शीघ्र ही कल्याण हो, बाद में देरी से कल्याण हो, वो भी भावना का विषय नहीं होता। वो 430 पत्र में आया, एक समय का अनवकाश रूप से सभी का कल्याण हो जाए। इस प्रकार के विचार से दोनों को सीधा सीधा मैंने सरल जो भी वस्तु स्थिति है वैसा भाव कर्तव्य है। और संसार में झगड़ा भी इस बात का ही रहता है कि ये मेरा पुत्र है तो ऐसा क्यों नहीं वर्तन करता, और ये मेरे पेरेंट्स है तो ऐसा क्यों नहीं वर्तन करता, ये मेरे भाई है तो ऐसा क्यों नहीं चलता, ये मेरा पति है तो ऐसा क्यों नहीं चलता, ये मेरी पत्नी है तो ऐसा क्यों नहीं चलते। ये तो झगड़ा है, क्यों कि जो भी संसार के संबंध है उसकी एक अपेक्षा वृत्ति, उस संबंध के अनुकूल अनुसार अपेक्षा वृत्ति रहा करती है, और ये अपेक्षा किसी की फुलफिल पूर्ण रूप से तो होती ही नहीं, आंशिक रूप से होती है, आंशिक रूप से तो होती ही नहीं, क्योंकि अपेक्षा से कोई मर्यादा नहीं है, अपेक्षा की कोई मर्यादा है ही नहीं, एंडलेस चीज है वो, तो अपेक्षा पूरी किसी की होती नहीं, और होती नहीं तो क्लेश हुए बिना रहता नहीं। तो ये तो एक ऐसा ज्ञान है कि ये सही ज्ञान होने से संसार के संबंध में भी क्लेश मिट जाएगा। नहीं, वो बात है ही नहीं, वो क्लेश मिटाने की बात है, या क्लेश करने की बात है ही नहीं, क्लेश कैसे मिटे वही बात है। सर्व प्रकार के दुख को और क्लेश को मिटाने का एक उपाय आत्मज्ञान ही है। आया 568 में दोनों बात है, दोनों पत्र में। यह बात अल्पकाल में ध्यान में लेने योग्य है, मैंने यह बात आप शीघ्र ही ध्यान में लेना। हाँ, आ बात अल्पकाल में चेतवा योग्य छे, એટલે ચેતવણી આપે, ચેતી જાઓ, તમે ચેતવણી દિયા કે તું ચેતો, ધ્યાન મેં લેને કામ બરાબર અનુવાદ નહીં ક્યાં હૈ, ચેતાના હૈ, ચેતાયા હૈ, એ વાત અલ્પકાલ મેં સાવધાન કરને, સાવધાની સે લક્ષ્ય મેં લેને યોગ્ય હૈ। મેને ऐसे विषय में हम बाद में करेंगे, फिर करेंगे, पीछे करेंगे, पहला उतना हो जाए बाद में, वो बात नहीं, अल्पकाल में शीघ्र ही तुरंत अभी ही आप काटो इस बात को, सावधान हो जाओ, फिर बड़ा नुकसान का कारण है, इसलिए अभी ध्यान में ले लो, अभी चेत जाओ। आपको और आपके सत्संगी यथासंभव निवृत्ति का अवकाश लें, यही जीव को हितकारी है। वो लोग वहाँ एक ग्रुप था खंभात में, सत्संगी लोग थे जो कृपालु देव के परिचय में आते थे, अंबालाल भाई वगैरह और भी हैं, क्योंकि निवृत्ति लेकर निवृत्ति का अवकाश लेना, सत्संग के लिए निवृत्ति का अवकाश लेना, और यही जीव को हितकारी है। तो सत्संग में ऐसी सब विचारणा चलती है कि जीव को कैसे कहाँ हित होता है, जीव को कैसे हित होता है, क्या कर्तव्य है, क्या है कर्तव्य है, इस तरह से पत्र समाप्त होता है, यहाँ तक रखें।